गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी आंखों में किरकिराते रिश्ते। सुबह से मन कच्चा कच्चा सा हो रहा था। राखी का दिन, बचपन याद आ रहा था। चूल्हे पर धीरे धीरे पकती खीर में पड़ी केसर की खुशबू, हाथों में मेहंदी के फूल, राखी के रेशमी चमकीले रंगीन धागे। सुबह से नहाकर नए कपड़े पहनकर दोनों भाई बहन घर में दौड़ लगाते रहते थे। एक रौनक सी हो जाती थी घर में। ए मत खा मिठाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है तुझे राखी बांधने के लिए। मैं अकेली क्यों भूखी रहूं? तो भाई कहता, जा जा मैं तो खाऊंगा, तुझे राखी बांधनी है तो तू रहे भूखी। जा मैं नहीं राखी बांधूंगी और मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। मत दे, वैसे भी पापा देते हैं ये पैसे, तू कौन सा कमाता है। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए जितने तुम इसको देती हो। हाँ मेरे राजा बेटा, तुझे भी पैसे मिलेंगे, पहले बहन से राखी तो बंधवा ले। बराबर के पैसे मिलने की शर्त पर राखी की रस्म पूरी होती। फिर तो वो थाली की दस राखियां बांधकर दोस्तों को भरी कलाई दिखाने चल पड़ता। कहाँ चला गया बचपन, कहाँ खो गए वो रिश्ते। एक ही कोख से जन्मे भाई बहनों के बीच क्या ऐसी तूरियां भी आ जाती हैं। बहुत सारे आंसू आंख में भर आए। बहुत सूना सूना सा लग रहा था आज का दिन। उसके दोनों बच्चे अपने पापा के साथ जिद करके कोई मिल गया फिल्म देखने चले गए थे, राखी की रस्म बस रस्म की तरह पूरी करके। बच्चों ने उससे चलने की बहुत जिद की थी पर वो रुक गई थी। राखी का दिन है ना, जाने कौन सी ननद चली आए। पास के शहर में ही तो तीनों रहती हैं, कोई आ गया तो कम से कम वो तो घर पे मिलेगी। अब अकेलापन न जाने कितनी पुरानी स्मृतियां खकोर रहा था। बचपन कैशौर्य के वो दिन जब उसका भाई उसका पूरा ख्याल रखता था, इस सहेली के घर से लाना, ट्यूशन पर छोड़ कर आना और उसका पीछा करने वाले लड़कों से झगड़ पड़ना, फिर भाई की पहली नौकरी की पहली तनख्वाह का गिफ्ट और उसकी शादी पर भाई का वो घंटों कमरा बंद करके रोना, फिर वो जब भाई का एक विजातीय लड़की से प्रेम संबंध हुआ और उसके विवाह के लिए घर में उसका कितना विरोध और झगड़ा हुआ था। एक वही थी उस वक्त जिसने मम्मी को मनाया था उस विवाह के लिए। वह लड़की से भी मिली थी और उस लड़की ने कितने वादे किए थे, दीदी जैसा मम्मी चाहेंगी वैसा ही होगा, मैं अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, आपके परिवार की परंपराएं अब मेरी भी तो हैं। कितनी कितनी दलीलें दी उसने मम्मी को भाई और पद्मा की शादी को लेकर। मम्मी जन्म पत्री दिखवा कर कह चुकी थी, बेटा जाति का झगड़ा हो तो छोड़ भी दूं, पर यह लड़की शुभ नहीं है उसके लिए, कल ही तो जोशी जी पत्रिका देख कर गए थे तेरे सामने। मम्मी ये पुराने पंथी की बातें छोड़ो, लड़की देखने में ठीक ही तो है, कर दो ना शादी भाई की, उसका मन रख लो। और फिर उसी के मन की हो गई थी, पर एक महीने में ही झगड़े शुरू हो गए थे। फिर दोनों अलग अलग हो गए, पास में एक अलग घर लेकर रहने लगे। मम्मी पापा से मिलने आते जाते रहते थे। अलग हुए 6 महीने भी नहीं बीते थे कि वह दुर्घटना घट गई जिसमें भाई का एक पैर चला गया। इतना बड़ा हादसा शायद, पर शायद वो परिवार को कहीं जोड़ भी रहा था। लग रहा था शायद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, सुबह के भूले घर को शायद लौट आएंगे। मम्मी अस्पताल में दिन रात एक करके उसकी सेवा करती रही, अपना अशक्त बुढ़ापा भुलाकर तन मन धन तीनों झोंक कर उन्होंने 3 महीने उसके साथ अस्पताल में बिताए। उसकी पत्नी तो मायके में थी क्योंकि उसे भी कुछ चोटें आई थी, और मैं स्वयं अपना घर पति बच्चे छोड़कर मायके के चक्कर काटती रही, हर संभव सहायता करती रही। और मेरे पति भी पीछे नहीं थे भाई की सेवा करने में, उसे गोद में उठाकर एक्सरे वगैरह के लिए ले जाते थे। वो भी मम्मी के बहुत करीब आ गया था। भाई दिन रात कहता, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है माँ, मेरा हाथ पकड़े रहो, मुझे सुला दो। मम्मी आंसू बहाती उसके करीब रात रात खड़ी रहती। कभी कभी वह जिद करके मम्मी को घर भेज देती थी और स्वयं उसका यूरिन बैग बदलती, गंदा बिस्तर साफ करती, शर्म छोड़कर बच्चे की तरह उसके कपड़े बदलवाती। सबके सहयोग व सेवा से वह घर लौट आया था, कृत्रिम आधुनिक तकनीक वाले नए पैर के सहारे चलता हुआ। वह लौटकर अपने अलग घर में नहीं गया, पत्नी से कह दिया था, तुझे आना हो तो आ जाना, मैं अब अपनी मम्मी से अलग नहीं रहूंगा। पर कुछ सप्ताहों में ही ये पासा फिर पलट गया। इस बार वह सारे रिश्ते ही तोड़कर चला गया था और इल्ज़ाम ये कि मेरे ससुराल वाले तो एरोप्लेन से मुझे बॉम्बे ले जाते और मेरा पैर बच जाता, तुमने तो कटवा ही दिया। सबने समझाया कि पैर में तो उसी दिन डिमार्केशन लाइन्स आ गई थी, बम्बई जाकर भी वह काटना ही पड़ता, लेकिन अब वह किसी की बात नहीं सुन सकता था सिवाय अपनी पत्नी के। रिश्ते फिर किर्च किर्च बिखर रहे थे, दिलों में दूरियां ही नहीं हुई बल्कि अलगाव की मोटी अभेद्य दीवारें खिंच गई थी। पर मम्मी के मन में उसके अपाहिज होने का दर्द हमेशा बना रहा। बेटा अपाहिज ना हो गया होता तो मैं उसे भूल जाती, पर मन में रह रहकर लगता है कि न जाने वह क्या करता होगा, कैसे कैसी नई परेशानियां होंगी उसको रोजमर्रा की जिंदगी में। करता क्या होगा, कार चलाता है, बीवी को लेकर घूमता है, खुश रहता है, पापा चिढ़कर कहते। माँ धीरे से कहती, अच्छा है, खुश रहे, बस और हमें क्या चाहिए। स्वयं मैं उसके लिए यही बात सोचकर अक्सर पिघल जाती थी। आज बार बार दिल में आ रहा था कि आज राखी के बहाने ही सही मैं भाई को फोन कर लूं। क्या हुआ जो पिछली बार मायके जाने पर वह उसके सामने से मुंह मोड़ के निकल गया था, मुस्कुराया तक नहीं था। वह भूल गया तो क्या, राखी पर उसका तो फर्ज बनता है। स्वयं को बहुत रोका भी, पति के डर से कि वो नाराज होंगे और कहेंगे कि जब भाई रिश्ता रखना नहीं चाहता तो तुम क्यों मरी जा रही हो। पर जब मन भावुकता के अतिरेक से भर गया तो मैंने मोबाइल पर कॉल कर लिया। फोन उसकी पत्नी ने उठाया। हाँ पद्मा, मुझे शांतनु से बात करनी है, नेपथ्य में आवाजें गूंजी। उसी का फोन है, वही कविता, पंजाबी लहजा और कठोर हो गया था उसका नाम लेते हुए। दूसरी तरफ से भाई की आवाज आई, हेलो हेलो। उसकी लरजती आवाज की नमी भी भाई की रूखी आवाज को कोमल न कर सकी। कैसा है? ठीक हूं। सगे भाई की आवाज का रूखापन उसकी आत्मा को छील रहा था। बस तेरी खैरियत जानने के लिए ही आगे बोल पाने की गुंजाइश नहीं थी, फोन कट चुका था। फोन लिए वह संज्ञा शून्य बैठी रही, फूट फूट के रोना चाहती थी कि तभी बाहर से बच्चों का शोर सुनाई दिया। कोई मिल गया, गुनगुनाते हुए दोनों बच्चे घर में घुस रहे थे। वो छिपा गई पति से फोन वाली बात। हाथ मुंह धोकर वह चाय बनाने किचन में जा ही रही थी तो बाहर ड्राइंग रूम में से इनकी आवाज आई, सुनो कविता, देखो कौन आया है। मैं बाहर पहुंची तो नीलू था। अरे नीलू, कैसे हो? ठीक है जिज्जी, छोंचा इस लाखी पर अपनी जिज्जी से लाखी बंधवाया है, आज पास है, कल ट्रांसफर पे दूर चली गई तो। कब चले? सुबह की ट्रेन से चले थे, छंजा होने को आई। अच्छा किया तुमने आकर, तुम बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। ना चाय फाये तो अब लाखी बंध भाई के ही पियेंगे, बल्कि खानो ही थाए लेंगे सीधे, मम्मी ने कही थी लाखी बांध के ही कुछ खाइयो। उसकी मासूम बातें सुनकर उसका मन खिल उठा था, उसकी 2 साल से सुनी पड़ी राखी आज मनेगी। ये उसके अपने क्या हुआ अगर सगा भाई नहीं तो ये सगे भाई जैसा हमउम्र चचेरा भाई जो बचपन से थोड़ा मंद बुद्धि था आज उसके सामने बैठा है राखी बंधवाने के लिए। कम से कम अपनी इस बहन से प्यार तो करता है, इतनी दूर से चलकर आया है अपना निश्चल निस्वार्थ प्यार लेकर। उसने जल्दी से रेशम घुंघरू बंधे धागे थाली में रखे, मिठाई रखी, दिया जलाया, रोली चावल लेकर अपने इस अनोखे स्नेहिल भाई के सामने आ गई। बड़े स्नेह से टीका करके राखी बांधी, मिठाई खिलाई। नीलू उठा, उसने पैर छुए और जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर थाली में डाल दिया। नहीं नीलू भैया, हम आपसे इतने पैसे नहीं लेंगे। आप आ गए यही बहुत है, नहीं तो हमारी ये राखी भी सुनी जाती। आवाज़ में उस फोन वाली घटना की पीड़ा थी। चिंता क्यों चलती हो जिद जी, अब हम जब भी कमाते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं, तुम्हें लेने पलेंगे वरना हम नाराज हो जाएंगे। उसके आंसू अब कैसे रुकते, वह फूट फूट कर रो पड़ी। नीलू भैया, पतिदेव, दोनों बच्चे हतप्रभ थे। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी आंखों में किरकिराते रिश्ते। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया पूजा श्रीवास्तव ने।